का था, रूह वही रूप नया।
अगली कहानी जो आप सुनने जा रहे हैं उसका नाम है शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर और इसे लिखा है कुमार रहमान ने। कम से कम सार्जेंट सलीम ने ऐसी खूबसूरत लड़की जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। सबसे सुंदर उस लड़की की आंखें थीं। ऐसा लगता था कि ख्वाब देख रही हूं। शायद ऐसी ही आंखों को शायरों ने ख्वाबावर आंखें कहा होगा। थोड़ा लंबा सा किताबी चेहरा, उस पर बाल की एक लट मालती की बेल की तरह झूल रही थी, जिसे वो बार बार अपने हाथों से हटा रही थी। चेहरे की रंगत ऐसी थी जैसे दूध में हल्का सा लाल गुलाल मिला दिया गया हो। भवें किसी कमान की तरह खींची हुई थी। आंखों के तीर वहीं से छोड़े जाते थे। सार्जेंट सलीम पलकें झपकाए बिना एक टक उसे देखे जा रहा था। आज संडे था और होटल सिनेरियो की आज की थीम थी मिस्ट्री। सिनेरियो की यही खास बात थी, हर संडे को होटल की एक खास थीम होती थी। उस थीम के हिसाब से होटल को बाहर से लेकर अंदर तक एक नया लुक दिया जाता था। आज होटल की बाहरी इमारत पर मिस्ट्री थीम के मुताबिक ही लाल और नीली रोशनी डाली जा रही थी। होटल में घुसते ही झिंगरों की झनकार पूरे माहौल को मिस्टीरियस बना रही थी। ये आवाज़ साउंड सिस्टम से निकाली जा रही थी। बड़ी बड़ी मूछों वाला गेट का दरबान भी रहस्यमय लग रहा था। होटल का मैनेजमेंट अपने परमानेंट कस्टमर को 3 दिन पहले ही थीम के बारे में बता देता था। उस दिन यहाँ ज़्यादातर लोग उसी थीम के मुताबिक आते थे। सलीम भी यहाँ का रेगुलर कस्टमर था और वो भी थीम के हिसाब से अपनी पर्शियन कैट के साथ यहाँ आया था। उसने काले सूट पर फेल्ट हैट लगा रखी थी। उसने हैट से अपना आधा चेहरा ढक रखा था। सलीम के साथ आई बिल्ली पूरी तरह से काली थी, अलबत्ता उसकी आंखें नीली थी। आमतौर पर पर्शियन बिल्लियों की आंखें पीली होती हैं। नीली आंखों वाली पर्शियन बिल्लियां बड़ी रेयर होती हैं। यही वजह है कि उनकी कीमत पीली आंखों वाली बिल्लियों से कहीं ज्यादा होती है। सलीम की बिल्ली का नाम लूसी था। उसके गले में पड़े पट्टे पर सोने की कढ़ाई की हुई थी। पट्टे पर उसका नाम लूसी भी लिखा हुआ था। इस पट्टे से चांदी की जंजीर बंधी हुई थी। एक कुर्सी पर सार्जेंट सलीम बैठा हुआ था और दूसरी पर बिल्ली आराम कर रही थी। वो खूबसूरत लड़की बड़ी बेतकल्लुफी से बिल्ली को गोद में उठाकर उसी सीट पर बैठ गई। लड़की बिल्ली के लंबे रेशमी बालों में उंगलियां फेर रही थी और प्यार से उसे पुचकार भी रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि लड़की ने एक बार भी सार्जेंट सलीम की तरफ नहीं देखा था। उसके उलट सलीम लगातार उस लड़की को देखे जा रहा था। वो उसे कालिदास के किसी नाटक की नायिका लग रही थी। अभी सार्जेंट सलीम उससे बात शुरू करने के बारे में सोच ही रहा था कि एक नौजवान आ पहुंचा और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो डार्लिंग, अभी टाइम है, कुछ देर बाद लौट कर आते हैं। लड़की ने लूसी को कुर्सी पर बहुत आहिस्ता से बिठा दिया, जैसे वो शीशे की हो और हल्का सा जर्ब लगते ही टूट जाएगी। सार्जेंट सलीम उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद सलीम ने एक भरपूर नजर डाइनिंग हॉल पर डाली। अभी बहुत भीड़ नहीं हुई थी, तमाम सीटें खाली पड़ी थीं। वो यहां जरा जल्दी आ गया था। उसने जेब से पाइप निकाला और उसमें वैन गॉग ब्रांड का तंबाकू भरने लगा। तंबाकू की खुशबू आसपास फैल गई। वैन गॉग पाइप में पीने वाली खुशबूदार तंबाकू होती है। पाइप जलाकर वो हल्के हल्के कश लेने लगा। सलीम ने कुछ कश लेने के बाद पाइप की राख और बाकी बची हुई तंबाकू एश्रे में झाड़ दी। उसे पीने में मजा नहीं आ रहा था, उसका मन उचाट हो गया था। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। उसने बिल्ली की जंजीर हाथों में थामी। लूसी भी जैसे वो और हो रही हो, वो भी तुरंत कुर्सी से कूद कर नीचे आ गई। सार्जेंट सलीम डाइनिंग हॉल के बाहर आ गया। उसने पार्किंग से मिनी बाहर निकाली और मेन रोड पर आ गया। ये कन्वर्टेबल कार थी, यानी उसकी छत को कभी भी एक बटन दबाकर फोल्ड किया जा सकता था। सलीम ने बाहर निकलते ही कार की छत हटा दी। लूसी उससे सट कर बैठी हुई थी। सलीम कार को यूं ही शहर में दौड़ाता रहा। उस पर उदासी का जबरदस्त दौरा पड़ा था, ऐसा अक्सर उसके साथ होता था। काफी देर वो कार को यूं ही इधर उधर दौड़ाता रहा। एक स्टोर पर उसने कार रोक दी और अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो वैन गॉग का पाउच खरीद कर लौटा। कार में बैठकर उसकी नजरें लूसी को तलाशने लगी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। उसने कार की लाइट जलाकर देखा तो जंजीर तो मौजूद थी, लेकिन लूसी लापता थी। वो परेशान हो गया, लूसी उसे बहुत प्रिय थी। सार्जेंट सलीम को गुस्सा आ रहा था। उसने ये हिमाकत की ही क्यों? क्यों? क्यों लूसी को छोड़कर अकेले अंदर चला गया? वो काफी देर यूं ही कार में बैठा पाइप पीता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लूसी को कहां तलाशे। मन पहले से ही उचाट था। लूसी के गायब होने से वो और ज्यादा उदास हो गया था। इस वक्त समुन्दर के किनारे काफी भीड़ लगी हुई थी। सोने की थाल जैसा सूरज धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। हर कोई समुन्दर की लहरों को देख रहा था। दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था। इन सबके बीच एक नौजवान दहाड़े मार मार कर रो रहा था। अजीब बात यह थी कि कोई उसे दिलासा देने वाला भी नहीं था। वो खड़े खड़े ही रेत पर धड़ाम से बैठ गया और दोनों हाथों से सर पकड़कर सिसकियां लेने लगा। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। उसने उस पूरे एरिया से लोगों को हटा दिया। कोतवाल इंचार्ज मनीष लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करने लगा। तभी मनीष की नजर जमीन पर बैठे आदमी की तरफ पड़ी। अब वो बैठा शून्य को निहार रहा था। मनीष ने उससे कई सवाल किए, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। भीड़ में से किसी ने उसे बताया कि वो लड़की के साथ ही आया था। मनीष उसके नॉर्मल होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक हेड कांस्टेबल लोगों के बयान दर्ज कर रहा था। कोतवाली इंचार्ज मनीष भी साथ ही खड़ा था। साहब, मैंने दूर से देखा था, वो किसी हीरोइन से सुंदर थी, डूबते हुए सूरज के साथ मोबाइल से फोटो खींच रही थी। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। कुछ देर बाद एक ऊंची लहर में खो गई। जब तक कोई कुछ समझता, उसका नामो निशान नहीं था। गुब्बारे बेचने वाले एक चश्मदीद ने हेड कांस्टेबल को बताया। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? मनीष ने पूछा। साहब, यहां तो लोग समंदर के पानी में खेलते कूदते रहते ही हैं। किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो पानी के इतने अंदर चली जाएगी। जब तक कोई कुछ समझता, वो लापता हो गई। गुब्बारे वाले ने तर्क दिया। तुमने उसे कब देखा था? इंस्पेक्टर मनीष ने पूछा। साहब, यहाँ शाम को काफी भीड़ होती है, लेकिन वो बहुत सुंदर थी, इसलिए हर कोई उनकी तरफ देख रहा था। मैंने उन्हें काफी दूर से देखा था। उस वक्त वो डूबते सूरज के साथ फोटो ले रही थी, गुब्बारे वाले ने बताया। तभी एक आदमी एक छोटी बच्ची के साथ मनीष के पास आकर कुछ बताने लगा। मनीष ने हेड कांस्टेबल से उसका बयान भी दर्ज करने को कहा। मेरा नाम राजेश है, उस आदमी ने परिचय देते हुए बात जारी रखी। मैं एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। ये मेरी बेटी है प्रिया। वो दोनों अपनी वैगन के पास कुर्सी डाले बैठे हुए थे। उसने वैगन की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो रुक कर कुछ देर वैगन को ध्यान से देखने लगा। फिर क्या हुआ? मनीष ने टोका। हाँ, राजेश ने चौंकते हुए कहा। मेरी बेटी ने उसे पहचान लिया था। वो फिल्म अभिनेत्री शेयाली थी। प्रिया सेल्फी के लिए जिद करने लगी। मैं जब उनके पास बेटी को लेकर पहुंचा, तो उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे धक्के देकर वहां से भगा दिया। काफी बदतमीज और मगरूर आदमी है। प्रोफेसर राजेश रुक कर फिर वैगन की तरफ देखने लगे। प्रोफेसर राजेश बहुत गुस्से में लग रहा था। उसका चेहरा लाल था। इसके बाद क्या हुआ? मनीष ने पूछा। शेयाली ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो मुझे धमकियां देने लगा। प्रिया डर कर रोने लगी और मैं वहां से चला आया, राजेश ने बताया। आप अपना पता और फोन नंबर नोट करवा दीजिए, हो सकता है कि हमें आपकी जरूरत पड़े। मनीष ने प्रोफेसर से कहा। तभी डायमंड ब्लैक कलर की गोस्ट आकर कुछ दूरी पर रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर कुमार सोहराब और सार्जेंट सलीम उतरकर मनीष के पास आ गए।
आप लोग?
मनीष ने दोनों को देखकर चौंकते हुए पूछा। क्या मामला निकल कर आया है? इंस्पेक्टर सोहराब ने मनीष से हाथ मिलाते हुए पूछा।
वो नई फिल्म अभिनेत्री शेयाली थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेकअप वैगन में यहाँ घूमने आई थी। उसका बॉयफ्रेंड वैगन के पास बैठकर ही शराब पीने लगा और वो घुटनों तक पानी में खड़े होकर सनसेट के साथ सेल्फी लेने गई थी। कुछ देर बाद ही वो गहरे पानी में उतरती चली गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते वो गहरे सागर में लापता हो गई थी।
उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है? सोहराब ने समंदर की तरफ देखते हुए मनीष से पूछा। उसके चौड़े माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई थीं।
वो सदमे में है, कुछ बोल नहीं रहा। मैंने उसे वैगन में ही बैठा दिया है, मनीष ने बताया।
वैगन की निगरानी में दो कांस्टेबल तैनात कर दीजिए। कोई उससे बात न करने पाए जब तक उसके बयान न दर्ज हो जाएं,
इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। मनीष ने दो कांस्टेबल वैगन की निगरानी के लिए भेज दिए।
वो कहां डूबी थी?
इंस्पेक्टर सोहराब ने समुंदर को गहरी नजरों से देखते हुए सवाल किया। मनीष ने उसे इशारे से बता दिया।
गोताखोर बुलाए हैं?
जी बस आते ही होंगे।
जल्दी कीजिए, कुछ देर बाद ही अंधेरा हो जाएगा, फिर बड़ी मुश्किल होगी,
सोहराब ने चिंता भरे स्वर में कहा। कुछ इंतजार के बाद भी जब गोताखोर नहीं आए तो इंस्पेक्टर कुमार सोहराब ने सार्जेंट सलीम को समंदर के किनारे के हिस्से की तलाशी लेने को कहा। सार्जेंट सलीम अच्छा तैराक था, नेशनल लेवल तक तैराकी में हाथ आजमा चुका था। कुछ देर बाद ही वो पानी में उतर गया। तमाम लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे, कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे।
बंद कीजिए तमाशा,
सोहराब ने बहुत तेज आवाज में कहा।
यहाँ किसी की जान चली गई है और आप लोगों को मजाक लग रहा है? बेहिसी की इंतहा है।
सोहराब बहुत गुस्से में था। उसको गुस्से में देखकर पुलिस वालों ने लोगों को लाठी फटकार कर दूर भगा दिया। सलीम पानी में लंबी लंबी डुबकियां ले रहा था। कुछ देर बाद वो ज्यादा गहरे पानी में चला गया। इंस्पेक्टर कुमार सोहराब बहुत ध्यान से उस पर नजरें गड़ाए हुए था। समंदर की लहरें तेज हो गई थी। 10 मिनट की गोताखोरी के बाद सार्जेंट सलीम बाहर आ गया। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था। तभी पास में एक ट्रक आकर रुका। सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसमें से कुछ गोताखोर उतर रहे थे। कुछ देर बाद रस्सी से बांधकर ट्रक के पीछे वाले हिस्से में रखे स्टीमर को उतारा जाने लगा। 4 गोताखोर आए थे, उनके साथ कुछ मजदूर भी थे जो स्टीमर उतारने में मदद कर रहे थे। कुछ देर बाद स्टीमर नीचे उतार लिया गया। गोताखोरों ने पोशाक पहन ली और अब उनकी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर बांधा जाने लगा। स्टीमर को पानी में डालकर स्टार्ट कर दिया गया। गोताखोर उस पर सवार हो गए। कुछ आगे जाने के बाद 2 गोताखोरों ने पानी में छलांग लगाई और लड़की की तलाश शुरू हो गई। सूरज ने भी पानी में डुबकी लगाई और फिर गायब हो गया। क्षितिज खून सा लाल दिख रहा था। सोहराब बड़े ध्यान से गोताखोरों को देख रहा था। उसे कम ही उम्मीद थी कि शियाली जिंदा बची होगी। सार्जेंट सलीम ने कपड़े पहन लिए थे। उसने समुंदर से मिले मोबाइल को रूमाल से साफ कर दिया। काफी महंगा मोबाइल था, वाटरप्रूफ भी था। उसने मोबाइल के बटन को हल्के से पुश कर दिया। स्क्रीन ऑन होते ही वो बुरी तरह चौंक गया। वो बहुत ध्यान से मोबाइल की स्क्रीन को देखे जा रहा था। सलीम की बेचैनी बढ़ गई थी। मोबाइल के वॉलपेपर पर एक लड़की की फोटो थी। ये वही लड़की थी जिसे सार्जेंट सलीम ने एक दिन पहले होटल सिनेरियो में देखा था। सार्जेंट सलीम के जहन में कल का पूरा दृश्य एक झटके में आकर गुजर गया। वो अचानक पानी के अंदर क्यों चली गई? क्या उसने खुदकुशी कर ली या फिर कोई साजिश है? ये सवाल सलीम के दिमाग में गूंज रहे थे। उसकी तंद्रा उस वक्त टूटी जब उसके कानों में सोहराब की आवाज गई। वो चौंक कर सोहराब की तरफ देखने लगा। सोहराब कह रहा था,
इस मोबाइल को लैब में भेज दीजिए, इसकी सारी डिटेल्स निकलवाइए, फोटोग्राफ, कॉल डिटेल्स के साथ ही चैट हिस्ट्री भी।
ओके। दोनों साथ खड़े होकर गोताखोरों को देखने लगे। कल मैं शियाली से मिला था, सलीम ने धीरे से कहा।
इंस्पेक्टर कुमार सोहराब चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ, क्या तुम उसे जानते थे? सोहराब ने पूछा। नहीं, लेकिन वो कल होटल सिनेरियो में थी, मेरे साथ ही बैठी थी।
उसके बाद उसने एक दिन पहले की पूरी दास्तान इंस्पेक्टर सोहराब को सुना दी।
ओह, इंस्पेक्टर सोहराब के मुंह से अनायास निकला। वो सिगार केस से एक सिगार निकालकर उसका कोना तोड़ने लगा। सिगार जलाने के बाद उसने दोबारा पूछा,
दोनों के बीच केमिस्ट्री कैसी थी? मेरा मतलब है कि शयाली के अपने बॉयफ्रेंड के साथ केमिस्ट्री कैसी थी?
दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी। जब दोनों होटल से निकले थे तो एक दूसरे का हाथ थाम रखा था, साजन सलीम ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन एक अजीब बात थी, शयाली ने ही उसका हाथ थामा था। उसके बॉयफ्रेंड के पकड़ में कोई गर्मजोशी नहीं थी।
अंधेरा होने लगा था। स्टीमर पर लगी फ्लैश लाइट्स ऑन कर दी गई थी। तलाशी अभियान अभी भी जारी था। ये तलाशी अभियान साहिल से 500 मीटर के रेडियस में किया जा रहा था। उसके आगे सर्च करना मुमकिन नहीं था। इंस्पेक्टर कुमार सोहराब सार्जेंट सलीम को लेकर मेकअप वैन की तरफ आ गया। ये काफी लंबी वैन थी। आमतौर पर फिल्म स्टार इसमें मेकअप के साथ आराम भी करते हैं। इंस्पेक्टर सोहराब को देखकर रखवाली में लगे दोनों कांस्टेबलों ने सैल्यूट मारा।
फिंगरप्रिंट उठा लिया अंदर से? सोहराब ने पूछा।
फिंगरप्रिंट हेडमास्टर ने सामने आकर सैल्यूट मारते हुए कहा, जी सर, उठा लिए गए हैं।
सलीम के पास शयाली का मोबाइल है, देखिए उस पर से अगर फिंगरप्रिंट्स मिल सके तो। हालांकि सलीम ने मोबाइल पर से पानी साफ किया है तो मुश्किल ही है कि कुछ बचा हो,
इंस्पेक्टर सोहराब ने चिंताजनक स्वर में कहा। वैन की खिड़की पर काली स्क्रीन लगी हुई थी। बाहर से अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सोहराब ने एक झटके में वैन का दरवाजा खोला। शयाली का बॉयफ्रेंड अंदर बैठा शराब पी रहा था। सोहराब गेट के बाहर खड़ा उसे देखता रहा। वो नया पैक बना रहा था। सोहराब उसके सामने कुछ ही दूरी पर खड़ा था, लेकिन एक बार भी उसने पलटकर सोहराब की तरफ नहीं देखा।
इसे बाहर उतारो,
सोहराब ने निगरानी में लगे कांस्टेबल से कहा। वो दोनों वैन में गए और उससे नीचे उतरने को कहा।
गेट लॉस्ट, वैन तुम्हारा बाप की नहीं है,
शयाली का बॉयफ्रेंड दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर कांस्टेबलों को गुस्सा आ गया और वो उससे जबरदस्ती नीचे खींच लाए। हंगामेबाजी में शराब की बोतल वैन में गिर गई। उसे नीचे उतारने के बाद सोहराब वैन में चढ़ गया। उसने हाथों पर दस्ताने चढ़ा लिए थे। वो वैन की तलाशी लेने लगा। तलाशी में सोहराब को कुछ खास नहीं मिला। उसने हर चीज का बड़ी बारीकी से मुआयना किया। वैन में मेकअप का सामान, परफ्यूम, विग जैसी चीजें थीं और कुछ ड्रेसेस भी थीं। अचानक सोहराब का पैर सेंटर टेबल से टकरा गया। उसे दो आवाजें सुनाई दी, एक पैर टकराने की और एक हल्की सी आवाज अंदर से भी आई थी। उसने छोटी सी सेंटर टेबल को पलट दिया। नीचे एक ड्रॉर थी जो ऊपर से नजर नहीं आती थी। ड्रॉर लॉक थी। उसने जेब से एक छोटा सा तार निकाला और ड्रॉर के लॉकर में डालकर हिलाने लगा। कुछ देर की मशक्कत के बाद ताला खुल गया। अंदर एक पिस्टल रखी हुई थी। इंस्पेक्टर सोहराब ने बहुत एहतियात से उसे उठा लिया। वो उसे उलट पलट कर देखने लगा। काफी महंगी इटली मेड पिस्टल थी। सोहराब वैन से नीचे उतर आया। उसने पिस्टल पर से भी फिंगरप्रिंट उठाने को कहा। वैन की हेडलाइट्स चला दी गई थी। वैन से दोनों कुर्सियां उतार कर करीब ही रख दी गई। एक कुर्सी पर शयाली का बॉयफ्रेंड बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने सोहराब बैठा उसे ध्यान से देख रहा था। शयाली के बॉयफ्रेंड की गर्दन नीचे झुकी थी।
आपका नाम क्या है?
सोहराब ने नर्म लहजे में पूछा। उसके बॉयफ्रेंड ने कोई जवाब नहीं दिया। सोहराब ने अपना सवाल दोहराया तो बॉयफ्रेंड ने चीखते हुए कहा,
तुम कौन हो, मेरा नाम पूछने वाला है?
उसके इस जवाब पर सार्जेंट सलीम को गुस्सा आ गया और उसने उसको गिरे बांध से पकड़ कर उठा लिया। जवाब में उसने सार्जेंट सलीम पर हाथ छोड़ दिया। सार्जेंट सलीम इसके लिए शायद पहले से ही तैयार था। उसने झुकाई देखकर वार खाली जाने दिया। तब तक दोनों कांस्टेबलों ने शयाली के बॉयफ्रेंड को पकड़कर जबरदस्ती कुर्सी पर बैठा दिया।
वो सार्जेंट सलीम को गुस्से में गंदी गंदी गालियां देने लगा।
ये क्या बेहूदगी है सलीम? तुम देख नहीं रहे हो कि उसने अपना करीबी खो दिया है और वो नशे में भी है? तुमसे ऐसी अहमकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी, दूर हटो।
इंस्पेक्टर सोहराब ने सार्जेंट सलीम को तेज आवाज में डांटा। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि एक कार पास ही आकर रुकी और उसमें से दो मर्द और एक लड़की उतरकर तेजी से शयाली के बॉयफ्रेंड के पास आकर रुक गए।
आप लोगों की तारीफ?
इंस्पेक्टर सोहराब ने नर्म लहजे में पूछा।
हम लोग शयाली मैम के असिस्टेंट हैं,
लड़की ने जवाब दिया। सोहराब तीनों को लेकर वहां से दूर चला गया। वो नर्म रेत पर उन तीनों के साथ चहलकदमी करते हुए उनके कामकाज, वर्क कल्चर और फिल्म इंडस्ट्री की बातें करता रहा। बात करते करते वो लोग काफ़ी आगे निकल गए। एक जगह रुककर सोहराब ने अचानक लड़की से पूछ लिया,
क्या शयाली खुदकुशी कर सकती है?
नो सर, नो,
लड़की ने तुरंत ही जवाब दिया।
वो बहुत मजबूत और जिंदा दिल इंसान थी, शयाली मैम खुदकुशी कभी नहीं कर सकती।
क्या उन्हें किसी से जान का खतरा था?
सोहराब ने यह सवाल साथ आए युवक से पूछा।
सर, वो फिल्म एक्ट्रेस थी सर, उनके प्रोफेशनल राइवल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई उनकी जान ले सकता है ऐसा लगता नहीं है,
युवक ने जवाब दिया।
आप लोगों को घटना के बारे में कैसे पता चला?
सोहराब ने साथ आए दूसरे युवक से पूछा।
सर, श्रेया ने टीवी पर न्यूज देखी थी, उसी ने हम दोनों को इन्फॉर्म किया,
उसने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा।
आओ वापस चलते हैं,
सोहराब ने पलटते हुए कहा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से वो फिर रुक गया, जैसे पैर में कुछ चुभ गया हो। हालांकि उसने गेंडे की खाल से बने मजबूत जूते पहन रखे थे। वो तीनों भी रुक गए। सोहराब ने सीधे होते हुए लड़की से पूछा,
शयाली के अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ते कैसे थे?
सर, वो विक्रम सर को बहुत चाहती थी, हमेशा उनके ही साथ घूमने जाती थी, लेकिन विक्रम सर।
अचानक श्रेया खामोश हो गई। सोहराब ने देख लिया था कि साथ आए एक युवक ने उसे कुहनी मारी थी।
लेकिन क्या?
सोहराब ने टोका।
कुछ नहीं सर, मैं ये कह रही थी कि लेकिन विक्रम सर बहुत बिजी रहते हैं।
उसके इस जवाब पर सोहराब मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कुछ देर बाद वो चारों लौट आए।
आप विक्रम को ले जा सकते हैं, जब तक उनके बयान नहीं हो जाते वो पुलिस की निगरानी में रहेंगे,
सोहराब ने कहा। कुमार सोहराब और सलीम वहां से कोतवाली इंचार्ज मनीष के पास आकर खड़े हो गए। अंधेरा काफी गहरा हो गया था, तलाशी अभियान को रोका जा चुका था, शयाली का कुछ भी पता नहीं चल सका था। धीरे धीरे साहिल पर तमाशबीन बने लोग भी चले गए। हर तरफ मौत का सा सन्नाटा था। शयाली की मौत का असर सलीम पर भी हुआ था। इंस्पेक्टर सोहराब ने मनीष से फिंगरप्रिंट रिपोर्ट और दोनों के बयानात ऑफिस पहुंचाने को कहा। इसके बाद दोनों गोस्ट पर सवार हो गए। कार एक झटके से आगे बढ़ गई। गोस्ट को सार्जेंट सलीम चला रहा था। कुछ ही सेकंड में कार ने स्पीड पकड़ ली। आपको क्या लगता है, शयाली ने खुदकुशी की है? कुछ देर की खामोशी के बाद सार्जेंट सलीम ने कुरेदा।
इतनी जल्दी नतीजे नहीं निकाले जाते। अगर आप पहले से नतीजे निकाल कर तहकीकात करेंगे तो हमेशा गलत नतीजे निकलने का खतरा बना रहता है,
सोहराब ने सिगार जलाते हुए कहा।
तहकीकात हमेशा फैक्ट्स और लॉजिक के सहारे आगे बढ़ती है।
उस लड़की और दोनों नौजवानों से क्या पता चला?
कुछ खास नहीं।
लड़की का बॉयफ्रेंड बहुत घमंडी आदमी है।
तुम्हें उसमें नहीं उलझना चाहिए।
वो आपसे बदतमीजी कर रहा था।
फिर भी तुम्हारा तरीका गलत था। वो शराब के नशे में था। गाड़ी को ऑफिस लैब की तरफ लेते हुए चलना।
क्यों?
मोबाइल देना है।
ओह हाँ, राइट। इसके बाद खामोशी छा गई। कुछ देर बाद कार शहर की सीमा में दाखिल हो गई। गोस्ट जीरो रोड से टर्न लेकर खुफिया विभाग की लैब की तरफ बढ़ गई। खुफिया महकमा कई एकड़ में फैला हुआ था। ये शहर के बाहरी छोर पर स्थित था। महकमे के अहाते में काफी हरियाली थी, या यूं कहें कि एक पूरा जंगल आबाद था तो गलत नहीं होगा। अंदर एक कृत्रिम झील भी थी जिसमें पंप से पानी भरा जाता था। इसी झील के पास लैब थी। लैब में 24 घंटे काम होता रहता था। कुछ देर बाद गोस्ट महकमे के गेट पर आकर रुक गई। सोहराब और सलीम ने कार से उतरकर आंखों की रेटिना की स्क्रीनिंग करवाई। इसके बाद बायोमेट्रिक्स मशीन पर फिंगर लगाने के बाद ऑटोमेटिक गेट खुल गया। लैब में मोबाइल फोन देने के बाद दोनों गुलमोहर विला की तरफ रवाना हो गए। सलीम अब इंस्पेक्टर सोहराब की कोठी गुलमोहर विला में ही रहने लगा था। सोहराब की ख्वाहिश पर ऐसा हुआ था। कई बार सलीम की तुरंत जरूरत पड़ती थी तो फिर उसके इंतजार में काफी वक्त खराब होता था। सलीम के आने से कोठी में अक्सर धमाचौकड़ी होती रहती थी। घर के नौकर भी बहुत खुश थे। इसकी वजह यह थी कि सोहराब काफी कम बोलता था, इसके उलट सलीम काफी बातूनी था। कार के नंबर प्लेट को स्क्रीन करने के बाद गेट अपने आप खुल गया। सोहराब को बहुत ताज्जुब हुआ कि अभी तक शेप नहीं खोली गई थी। सोहराब ने लोमड़ी और एल्सेशियन कुत्ते की मेल से नई नस्ल बनाई थी और इसका नाम उसने शेप रखा था। शेप की आंखें पीली और दांत लंबे और तीखे थे। ये एल्सेशियन से 5 गुना ज्यादा ताकतवर थी। सोहराब के सख्त आदेश थे कि सूरज डूबने के बाद शेप को खोल दिया जाए। उसके पास 7 शेप थी। इनमें से रोटेशन में 3-3 शेप को हर दिन कैंपस की निगरानी के लिए खोला जाता था। पोर्च पर पहुंचने के बाद उसे कार खड़ी नजर आई। काफी महंगी कार थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। सोहराब को ताज्जुब हुआ कि इस वक्त कौन आ सकता है भला। वो कोठी की सीढ़ियां चढ़ते हुए जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वहां एक मोटा तगड़ा आदमी बैठा ऊंघ रहा था। काफी महंगे कपड़े पहन रखे थे। उसकी सारी उंगलियों में हीरे जवाहरात की अंगूठी थी। यही नहीं, गले में भी कई मोटी मोटी सोने की चेन और पेंडेंट लटक रहे थे। उससे कुछ दूरी पर एक दुबला पतला युवक भी बैठा हुआ था। कदमों की आहट सुनकर वो सीधा होकर बैठ गया। सर, मेरा नाम कैप्टन किशन है, उसने हाथ जोड़ते हुए सोहराब से कहा। वो तो ठीक है, लेकिन आपका मंगलसूत्र कहाँ है? सार्जेंट सलीम ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। सोहराब सार्जेंट सलीम को घूरने लगा। शेयाली के मोबाइल से कौन से राज मिले और बॉयफ्रेंड विक्रम की असलियत क्या थी, जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ 34 किलोमीटर का अगला भाग, सिर्फ गाथा पर।